आस्तिक इस वक्त अपनी माँ नेहा रायचंद के सामने खड़ा था और नेहा जी आस्तिक पर बहुत बुरी तरह से नाराज हो रही थी। वे आस्तिक की स्थिति के लिए अरुणिमा को दोषी ठहरा रही थी और गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आस्तिक? किसी लड़की के लिए तुम ये सोच सकते हो कि अपने पिता के साथ रिश्ते खत्म कर दोगे? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरुणिमा का प्यार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, भी तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अरुणिमा को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी करो और अपना सपना पूरा करो। अचानक से आस्तिक की हंसी छूट जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे नेहा जी ने सच में कोई चुटकुला सुना दिया हो। क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आ रही हूँ? उसे ऐसे हंसते देख नेहा जी और गुस्से में बोली, पागल हो गए हो क्या? मैं क्या मजाक कर रही हूँ जो तुम हंस रही हो? लेकिन अगले ही पल आस्तिक का चेहरा कठोर हो गया और वो हंसना बंद कर देता है। गुस्से भरी निगाहों से नेहा जी को देखते हुए बोला, नहीं माँ, ना तो आपने कोई चुटकुला सुनाया है और ना ही आप जोकर नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे अपनी कठपुतली समझ रखा है और चाहते हैं कि मैं आपके इशारे पर नाचूं। तभी तो आप लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज तक आपने मुझे अपने इशारों पर नचाया है और मुझे कंट्रोल किया है, इसलिए चाहते हैं कि आगे भी मुझे कंट्रोल करें। और जब ये कठपुतली आपके इशारों पर नहीं नाच रही है तो आप लोग वो बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर रायचंद से तो मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन आपसे नहीं थी। मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगी, मेरे साथ खड़ी होंगी, लेकिन नहीं, आखिर आपने भी मुझे एक खिलौना ही समझा। नेहा जी गुस्से में बोली, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ दूँ? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो आस्तिक, वो चीज़ तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हारा करियर, तुम्हारा बिजनेस, यहाँ तक कि माफिया में तुम्हारी जगह, ये सब कुछ छिन जाएगा, और वो भी किसकी वजह से? अरुणिमा की वजह से। आस्तिक एकदम से चिल्ला पड़ा, बस कीजिए माँ, एकदम चुप कीजिए। मैं अपनी अरुणिमा के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपने उसके खिलाफ कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। नेहा जी के कदम डगमगा गए। गुस्से में आस्तिक को देखते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? एक कल की लड़की के लिए अपनी माँ से ऐसी बात कर रहे हो और अपने पिता के खिलाफ जा रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा वो सपना जिसके लिए तुम जीते आ रहे थे? कहाँ गई तुम्हारी वो जीतने की चाह जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे? भूल गए? तुम्हें भी तो उस लड़की से प्यार था, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका? हाँ, अमायरा, याद आया मुझे। लेकिन तुमने तो उसे अपने सपने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना बहुत बड़ा था। और उसके बाद तुमने अरुणिमा से शादी कर ली, क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। तुमने सब कुछ अपने सपने के लिए किया था और ये बात भी मान ली थी कि एक साल के अंदर वो तुम्हें एक बच्चा देगी। लेकिन अब वो बच्चा देने लायक नहीं है, तो क्यों तुम एक लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? आस्तिक, बात को समझो और ये सब तमाशा बंद करो। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर देंगे और तुम्हें फिर से वही देंगे जो तुम चाहते हो। आस्तिक बोला, मुझे अरुणिमा चाहिए माँ, पर क्या करूँ, आप लोगों ने तो उसे मुझसे दूर कर दिया है। आज आप लोगों की वजह से मुझे उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ना पड़ा। तो क्या आप मुझे मेरी अरुणिमा वापस ला सकती हैं? आस्तिक ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। नेहा जी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो आस्तिक ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, इस बारे में आपसे बात करना एकदम बेकार है, इसलिए मैं भी अब आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो आगे बोला, लेकिन कुछ बातें हैं जो क्लियर हो जाएं तो अच्छा है। ना तो आप इस बारे में बात करेंगी और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखेंगी। तो पहली बात यह है कि मैंने अमायरा को छोड़कर अरुणिमा को चुना क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना था, अपनी मंजिल हासिल करनी थी। हाँ, उस वक्त मैं स्वार्थी था और मैंने ये सोचकर ऐसा किया कि एक वक्त के बाद मैं अरुणिमा को छोड़कर फिर से अमायरा के पास चला जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। अमायरा वो लड़की थी ही नहीं जो आस्तिक रायचंद को संभाल सके। उसके साथ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, लेकिन असली सुकून मुझे सिर्फ मेरी अरुणिमा के पास ही मिलता था। इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया, और वो प्यार कोई मामूली प्यार नहीं था। वो प्यार की वो हद थी जिसे मैं चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकता था। वो प्यार नहीं, एक जुनून है जो मैंने अरुणिमा के लिए महसूस किया है। अमायरा के दूर जाने पर मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ और ना ही इस बात की फिक्र हुई कि अगर वो मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन अरुणिमा के दूर जाने से मैं तड़प उठता हूँ, मेरी जान निकल जाती है, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। इसी से मुझे पता चलता है कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए सांसों की नहीं, मेरी अरुणिमा की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पर अपनी माँ को लेने आया था, जिसने बहुत प्यार से मुझसे कहा था कि अरुणिमा मुझे जिंदगी में वो हासिल करने में मदद करेगी जो मैं चाहता हूँ। मुझे लगा कोई मुझे समझे ना समझे, माँ आप तो मुझे समझेंगी, इसलिए मैं आपके पास आया था सहारा ढूंढने के लिए। पूरी दुनिया में एक बच्चा अपनी माँ से उम्मीद लगाए रहता है, वही उम्मीद मैंने आपसे की थी कि आप मुझे और मेरे प्यार को समझेंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अरुणिमा से दूर जाने के बाद मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन अरुणिमा को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी खुद से दूर जाने दूंगा। मुझे उससे कोई वारिस नहीं चाहिए, कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुणिमा चाहिए। ये कहते हुए आस्तिक ने नेहा जी की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि उनकी नजरों में अपने बेटे के लिए एक ममता की झलक नजर आएगी और वो आस्तिक और अरुणिमा के प्यार में उसका साथ देंगी। लेकिन जब नेहा जी ने आस्तिक को देखा तो उनकी आंखों में तिरस्कार और घृणा की भावना थी। ये देखकर आस्तिक को एहसास हो गया कि वो इतने सालों से एक भ्रम की जिंदगी जी रहा था। जिस परिवार को वो अपना कहता था वो परिवार उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। नेहा जी आगे आई और आस्तिक के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, देखो आस्तिक, तुम जो बातें कर रहे हो वो सब सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी के लायक नहीं है। तुम खुद सोचो, इतना बड़ा एम्पायर है, बिजनेस है, क्या होगा इन सबका, और माफिया में तुम्हारी जगह। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी, तुमने बचपन से उसके लिए ट्रेनिंग ली है और ये सपना देखा है। क्या तुम अपना सपना एक लड़की के लिए छोड़ दोगे? अरुणिमा तुम्हारे लिए तुम्हारे बचपन के सपने से भी ज्यादा बड़ी हो गई है क्या? उनके शब्दों में जितनी मिठास थी आंखों में उतना ही षड्यंत्र नजर आ रहा था, और आस्तिक अब सच और झूठ की पहचान बहुत अच्छे से करने लगा था। जिंदगी की ठोकरें खाकर वो इतना तो समझ ही गया था कि किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं। इसलिए अगले ही पल उसने नेहा जी का हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा, आप मेरी माँ हैं भी या नहीं? नेहा जी की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। आस्तिक उन्हें देखते हुए बोला, क्या सच में मैं आपको उस औरत के रूप में देख पा रही हूँ जिसने मुझे जन्म दिया था और एक अच्छा लीडर बनने की सीख दी थी? क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ लालच और स्वार्थ से भरी एक औरत नजर आ रही है जो अपने नफरत और गुस्से के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल कर रही है।
आस्तिक, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? नेहा जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो आस्तिक ने भी चिल्लाते हुए कहा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और सच तो यही है कि आप हमेशा से एक स्वार्थी औरत रही हैं और हमेशा से अपने आगे किसी और को नहीं देखा है, जिसकी शुरुआत सालों पहले ही हो गई थी जब आपने अच्छाई का मुखौटा पहनकर सबसे पहले अपनी दोस्त को धोखा दिया था। शायद आप भूल गई हैं, लेकिन मुझे सब याद है। बताइए, क्या ये सच नहीं है? पुष्कर रायचंद के साथ पहली शादी आपकी दोस्त की होने वाली थी, लेकिन आपने अपनी दोस्त को धोखा दिया और उसके बदले खुद मिस्टर रायचंद से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आपने अपनी दोस्त को धोखा दिया। दुनिया के सामने आप जितनी बेबस और लाचार बनकर आई थीं, असल में आप उतनी ही चालाक थीं, क्योंकि आपने भी मिस्टर रायचंद से पैसे, पावर और पोजीशन के लिए शादी की थी।